नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दो वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि पहली ट्रेन के सभी परीक्षण हो गए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि दूसरी ट्रेन के अगले महीने के मध्य तक परीक्षण पूरे कर लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रात भर की यात्रा के दौरान नियमित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से इन रेलगाड़ियों को एक साथ शुरू करना होगा। श्री वैष्णव ने आगामी त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की भी घोषणा की।
इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा 12,000 में से 10,000 ट्रेन इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स उससे पहले नोटिफाई हो जाना, ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ। करीब 150 ट्रेन्स होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट चालू होता है जो कि चलेगा करीब करीब 15 नवंबर तक।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में प्रमुख दलहनों और तिलहनों की खरीद को स्वीकृति दे दी है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कल एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और किसान केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने दोनों राज्यों के किसानों से उड़द और अरहर की पूरी खरीद के साथ साथ मूंग, तिल, मूंगफली तथा सोयाबीन खरीदने को भी मंजूरी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तेज वर्षा और लोअर टेरना परियोजना से पानी छोड़े जाने के कारण टेरना नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे लातूर जिले के औसा तालुका का एक गांव बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उधर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कई इलाकों में पानी कम हो गया है। शहर के कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं सामान्य हैं और बस सेवाओं में सुधार हो रहा है। इस बीच राज्य में रात भर हुई बारिश से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में तेज वर्षा होने की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वो भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानबाजी करके इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग कर रहा है। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने परिषद के 60वें सत्र को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत की भूमि पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करने के बजाय उसे खाली करना चाहिए और अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आज न्यूयॉर्क में विकासशील और अल्प विकसित देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। डॉ जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि उन्होंने सिंगापुर, सेंट लूसिया और सोमालिया के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। सऊदी अरब के वरिष्ठ मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल अल शेख का कल निधन हो गया। शेख अब्दुल अजीज वरिष्ठ विद्वानों की परिषद, विद्वानों के अनुसंधान और इफ्ता की सामान्य अध्यक्षता और मुस्लिम विश्व लीग की सर्वोच्च परिषद के भी अध्यक्ष थे। वे सऊदी अरब के सबसे प्रमुख धार्मिक नेताओं में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। 15 ओलंपिक स्पर्धाओं और 2 गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में निशानेबाजी की नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता आज से 2 अक्टूबर तक डॉ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर 4 चरण में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।